ஆனந்தேஷ்ய ஜனாஞ்சன சபாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஜேனா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. குரவே கௌரசந்திராய ராதிகாய ஸ்ததாலய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ணபக்தாய ஸத்பக்தாய நமோ நமஹ. மன்ஷாகல்பதருப்பஸ்ய கிருபா சிந்துர்பைவ ச பதிதானம் பாவனேப்போ வைஷ்ணவேப்போ நமோ நமஹ. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி ஹரி, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. சாஸ்திரமே தேகா ஜாதா ஐசா रोगी कड़वा दवाई नहीं लेना चाहते, तभी पेरेंट्स लोग गार्जियन लोग दवाई उनको खिलाने के लिए कोशिश करते हैं करती है. மேரா போலே கா இச்சா குச்சு தீ லக்கின் தபியத் கடபடா தீ இஸ்லியே மேனே பஜ்ஜபாத் நாராயண் மஹாராஜ் ஜி கோ ஹீ போல் தியா ஆப் குச்சு போலியே ஃபிர் உன்கோ ஹமாரே பாஸ் தே தியா. கோயி ஹாலத் சே
சுட்காரா நஹீ,
ஹாஂ சுட்காரா நஹீ. कही है वैष्णवों का दया अहित की करुणा कृपा है, वैराग्य युग भक्ति रसंग प्रजतन रपाजयन मम अनभिषुमंधम कृपाम्बुधीर्ज पर दुख दुखी सनातन तं प्रभुवाश्रया. सनातन सनातन गोस्वामी प्रभु का ही सब वंदना किया है दास गोस्वामी. इतना सुंदर दवाई है, ये लेने के लिए हमारा एकदम इच्छा नहीं, तभी क्या जोर जार करके कुछ पिलाने के लिए तैयार है. हम लोग यहाँ पर आए, ये मठ का नाम है रूप सनातन गौड़ीय मठ. पहले ये मठ में आने के पहले श्री रूप गोस्वामी प्रभु और सनातन गोस्वामी प्रभु को पहले वंदना करना है. केवल वही दोनों नहीं और बाकी चारों हैं. अगर षडगोस्वामी को वंदना करे तो और बहुत सा गोस्वामी लोग सब पड़े हुए हैं, तो वो लोग को भी साथी लेना है. इससे मालूम होगा रूप सनातन गौड़ीय मठ में क्या दर्शनीय है. पहले आकर के दर्शक लोगों ने सामने में देखेंगे क्या रूप सनातन जी तो है ही है, पीछे श्री गौर राधा विनोद बिहारी जी है. तब पहले देखते हैं क्या रूप सनातन को आश्रय करके ये दर्शन करना है ठाकुर जी को, तब दर्शन ठीक होगा. रूप सनातन गोस्वामी उसको आदर से ही दर्शन करना है। साधु संत लोग जैसा दर्शन करते हैं ठाकुर जी को वो अलग चीज है। हम लोगों को गुरु जी बोल रहे थे, क्या देखो ठाकुर को पास जाना है, क्यों तुम दर्शन करोगे ये बात नहीं, ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि दें इसीलिए उनके पास जाना चाहिए। तुम्हारा ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए आंख ठीक नहीं है, तुम्हारा जो आंख है ये जड़ है, पंचभौतिक है, इसलिए ठाकुर जी को पास जाना चाहिए। क्यों? ठाकुर जी को शुभ दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ेगा इसीलिए जाना चाहिए। अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर, ऐसा है तो जो चीज अप्राकृत है, प्राकृत दृष्टि से तो नहीं देखना है। लेकिन ऐसा दर्शन मिले ऐसा प्रार्थना भी रखना है साथ ही साथ। तो ये सनातन रूप सनातन गौड़िया मठ में आकर के पहले गुरु विष्णु का अनुगत्य चाहिए, घुसने के लिए पहले पीछे ठाकुर जी जो बैठे हैं उनको दर्शन करने के लिए ही गुरु वैष्णवों का आश्रय करना है, अनुगत्य चाहिए, सब दर्शन मिलता है। आश्रय विग्रह जो है विषय विग्रहों को परिचय करा दी, उनको कृपा बिना विषय विग्रहों को दर्शन और सेवा कुछ नहीं मिल सकते। तो रूप सनातन गौड़ीय मठ में आने के पहले मन से ही प्रतिज्ञा करना है अनुगत्य, गुरु वैष्णव अनुगत्य। हम लोग सब स्वरूप रूपानुगो गौड़ीय वैष्णव के दशानुदास दशानुदास भक्त है, वही हम लोगों का परिचय है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपना परिचय दिया है, नाहं विप्रो न च नरोपतीर्णो मनस्थो ज्योतिर्बा। नहीं, नाहं विप्रो न च नरोपतीर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतीर्नो मनस्थो ज्योतिर्बा किंतु प्रद्युखिल परमानंद पूर्ण मृताब्दे गोपी भर्तु पद कमल दास दास दशानुदास, वही हम लोगों का स्वरूप परिचय है। ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं हम लोगों की शिक्षा के लिए, क्यों उन्होंने जगतगुरु है, अखिल लोक शिक्षक शिक्षक है, वो हमारे लिए बोला है शिक्षा के लिए। हम लोगों का स्वरूप का क्या परिचय है ये समझाने के लिए, हृदयंगम करने के लिए स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं। ये दुनिया में जितना हम लोगों का बहादुरी है। अगर सब कुछ गुरु वैष्णव को दिया जाए, सर्वाराध्य भगवान को दिया जाए, सब ठीक है। सेवा वृत्तियां जितना है ये सब तो शिव वस्तु के ऊपर ही डालना है। मैं शिवक है, शिवक रूप में जो कुछ करना है शिव को सुख विधान के लिए जो कुछ करना है उसको ही भक्ति बोला जाए। लिखा है ऐसा, सेवा भज स्त्री सब धातु सेवायांग परिकीर्तित अत सेवा बुधई प्रक्ता भक्ति शब्देन भूयसी। अर्थ क्या होता है? सेवा और भक्ति दोनों एक ही चीज है। भजन, सेवा और भक्ति, आराधना, उपासना एक ही बात है। ये सब सिनोनिम्स है। तो वही सेवा के लिए हम लोगों को कोशिश करना है। यही साधक और साधिकाओं के यही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है। साधन जब तक चल रहा है तब तक मैं बद्ध जीव है। बद्ध भूमिका में जितना तक है मेरा अधिकार साधक रूप अधिकार। सिद्ध भूमिका में जब आ जाए तब भजन शब्द प्रयोग होता है। ये भी गोस्वामी लोग बतलाया सिखलाया। तब साधक साधिका रूप में साधन शब्द प्रयोग होगा और सिद्ध भूमिका में भजन शब्द प्रयोग होगा। साधन भजन ये दो शब्द एक साथ उच्चारण किया जाता है। साधन भजन ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। लेकिन साधन से भजन बहुत अंतर है, बहुत फर्क है ये दो शब्दों में। भजन कब होता है? जब अनुभूति आती, वास्तव अनुभूति जब आती है तब भजन शब्द प्रयोग किया जाए। उसके पहले तक साधन शब्द ही प्रयोग करना है। वास्तव रियलिटी जब तब भजन है। इसलिए साधक और सिद्ध ये दोनों एक ही नहीं है, उसमें कुछ अंतर होता है। भजन करना है किनका? भजनीय वस्तु का। तो भजनीय वस्तु क्या है? शास्त्र में लिखा है हरि गुरु वैष्णव सेवा। गुरु वैष्णव हरि है तीन लेकर के विचार है। बिना गुरु सेवा से हरि सेवा नहीं हो सकती, बिना वैष्णव सेवा से हरि भक्ति नहीं हो सकती। तो क्या है? इस तीनों को एक साथ लेना है। गुरु छोड़ करके भगवत सेवा नहीं हो सकता है। फिर वैष्णव कृपा नहीं होने से परिवर्तन नहीं हो सकता है। दो जरूरी है, दोनों का कृपा तब हरि शोभा हो सकता है, हरि भजन हो सकता है। मूल लक्ष्य है हरि सेवा हरि भजन। अगर ऐसा बोला जाए मैं गुरु सेवा ही करूंगा और कुछ नहीं, तब तत्व दर्शन ठीक नहीं होगा, गड़बड़ी हो गया। यद्यपि गुरु ही वैष्णव है, श्रेष्ठ वैष्णव है, तथापि वैष्णव तत्व तो है ही है, पड़ा हुआ है। तो गुरु वैष्णव का कृपा से भगवत भक्ति लाभ होती है, भगवत आराधना साधन भजन सब कुछ हो सकता है गुरु वैष्णव को कृपा से। वही बोल दिया शास्त्र में, इसे लिखा पार्वती जी शिव जी को पूछ रहा था कि इनका आराधना करना है, श्रेष्ठ आराधना कौन है, पार्वती जी पूछी थी। उत्तर क्या दिया शिव जी, आराधनानं सर्वेशं विष्णुराराधनं परम। अगर आराधना करोगे तब भगवान की आराधना करो, समझ लिया। लेकिन ये छोड़ करके और कुछ श्रेष्ठ है, तो शिव जी हंसने लगा, है क्या बोलिए, तस्मात् परतरंग देवी तदीयानं समर्चनम। हे देवी पार्वती, भगवान का सेवा, भगवान की सेवा जहां से ठीक ठीक रूप में वास्तव रूप में मिलता है उनको आराधना करना और बड़ा यह है। तो इधर एक विचार है, शिव जी ऐसा बोल रहे हैं, भगवान भी ऐसा बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं हमारा सेवा से उपासना से हमारा जो गुरु वैष्णव है उनको उपासना अधिक है, श्रेष्ठ है, ऐसा। फिर भक्त भी बोल रहे हैं मेरा परम पक्ष भगवान है, उनका ही आराधना करना श्रेष्ठ है। तब दोनों में तो गड़बड़ी हो जाएगा। गड़बड़ी नहीं है, अपना अपना विचार ठीक है। भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान भक्त भक्तिमान बोल करके एक बात है, भक्त के ऊपर भक्तिमान है भगवान, ये तो भगवान का विचार है। और भक्त क्या बोल रहे हैं, भगवान ही हमारा सब कुछ है, भगवान को छोड़ करके मैं कोई किसी को नहीं जानता है। ये भक्त भगवान में एक प्रेम की लड़ाई है, ये स्नेह ममता की, ये पहले था रहेगा, ये तत्वदर्शन है। भगवान भक्तों को बढ़ाते हैं, फिर भक्त भी भगवान को बिना नहीं चल सकते। ये तो है ही है। तभी विचार तो है, कृष्ण भजन है। अगर भक्त नहीं है तो भजन कौन करेगा, कैसा होगा? तो इसीलिए ये दुनिया में भगवान को भी रहना पड़ेगा, भक्तों को भी रहना पड़ेगा। क्यों? भक्त भगवान और भक्ति नित्य चीज है। ये तत्व दर्शन है, ये तीनों को लेकर के चलना पड़ता है हम लोगों को। किसी को छोड़िए छोड़िए, सदन भजन नहीं होगा। अगर भगवान को छोड़ना है तो किनका उपासना होगा? फिर गुरु वैष्णव को छोड़ना है तो कैसा उपासना हो सकती है? वो भी नहीं होगा। तो तीनों को ही रहना चाहिए। एक को अस्वीकार करने से तत्व दर्शन एकदम बदल जाएगा। उपासना रखना है तो ठीक ही है, तीनों को रखना है, वही विचार है। आज इतना तक यहाँ पर रह गए, कुछ पढ़ा दिया है। हरे कृष्ण।
और दीक्षा इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं। अजामिल ने जब पहला नाम लिया, अपने पुत्र का नाम रखा नारायण, उसको कोई दीक्षा दिया था? महापाप की यदि क्यारी जगह शराब पीने वाला, ऐसा कोई पाप नहीं जो ना किया हो, और वो हरिनाम किया, नारायण नाम, बेटे का नाम रखा। विश्वनाथ चक्रवर्ती साधु जी कहते हैं कि पहले जब नाम रखा उसी दिन उसके जितने पाप सब जो कुछ थे सब कुछ खत्म हो, पहले ही नहीं, पहले नाम नहीं हो, और उसके बाद में जो किया वो अभ्यास था, मतलब कुछ भजन साधन था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो कुछ चोरी भी करता था, मदिरा भी पान करता था, गरी चार भी करता था, सभी सब कुछ करता था। नाम लेने के दीक्षा लेने के बाद भी कहते हैं कि ये तुम्हारा देखना गलत है, देखना गलत क्रिया की होती थी कि सुक्रिया में कोई शक्ति नहीं थी। जैसे चना को मिट्टी में डाल दीजिए तो उसे अंकुर होकर के फल होगा, और उसे भून दीजिए, अब भून करके उसमें दीजिए सार दीजिए 1,00,000 मन, पानी भी दीजिए, उसका कुछ दीजिए हमको नहीं। वो जो नारायण का नाम किया उसका पातक उसके जल गए थे, अब उसके जो व्यभिचारी त्यागी और दीख पड़ते थे वो अज्ञानियों की दृष्टि में वो कर्म जैसे लगते थे, व्यभिचार करते थे, किंतु जैसे सबका विपतंस तोड़ दिया जाए और वो काटने पर भी बीज नहीं होता, धुने में चने को या धुने में किसी बीज को दो उसे अंकुर नहीं निकलता। इसी तरह से उसके जितने अब जो व्यभिचार देखे गए वो कोई फल देने वाला नहीं रहा, बंधन होने वाला नहीं रहा। जैसे रस्सी को जला दो मूंगी की रस्सी, तो उसमें ऐंठन तो रहती है किंतु वो फट न रहता है, उसको छूने से ही वो मलमता जा रहती है किंतु रस्सी अपना काम नहीं देती। और यही कारण था उसके नाम के इस फल से विष्णु दूत जैसे लोगों का जन्म मिला और उनसे उसकी दीक्षा हुई। इनसे वो जो दूध जा रहे थे विष्णु के दूध, उस नमाबाद का यह फल था कि उसने आज तक जीवन में किसी वैष्णव का की अवज्ञा नहीं की, वैष्णव अपराध नहीं किया था, पूर्व जन्म में ही आई उसके पर उसने नमाभाग किया और इस नमाभाग का फल यह हुआ कि अब क्यों ना था विष्णु के दूध के लोग आए और उनको दीक्षा दे और उनको नाम के महात्मा की पूर्ण रूप से कथा नाम क्या है। उसी तरह से भगवान की जो भक्ति है, भगवान का नाम है समन कीर्तन इत्यादि करना, सदसंग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा बाद श्रीमुक्तेश्वर सकल साधन से एक बहुत जन्म कृष्ण प्रेम जन्माए एक पांचों प्रतिज्ञा करके कहते हैं कौन सा रहा है ये चैतन्य के स्थान कहां से कह रहे हैं। रूप गोस्वामी की प्रतिज्ञा घोषणा पत्र से कहा है, उन्होंने घोषणा ऐसी की है सर्वसंग नाम कीर्तन सर्वों का संग हो और भागवत श्रवण हो ऐसे रसिक वैष्णवों के मुख से और वृंदावन में जाते रहना है और भी विग्रह का सेवन जरूर कृष्ण प्रेम निश्चित रूप से होगा, इसको कोई भी बंद नहीं कर अवश्य में होगा ही जरूर प्रेम फलेगा। किंतु बस एक ही शर्त है, यदि वैष्णव की अवज्ञा नहीं की, कोई अपराध नहीं किया तो हम लोगों में यही गड़बड़ी है। हरिनाम भी करते हैं, तीर्थ में भी बात करते हैं, कभी कभी भागवत सुनाने का सुनते नहीं, सुनाने का भी नहीं करते हैं बहुत से सब लोगों को कितना उपदेश है किंतु वैष्णव अपराध से बच नहीं पाते और इसका कारण हसी में विगत में जैसे तैसे कुछ अवज्ञा हो जाती है, उनकी कुछ निंदा हो जाती है जो भगवान के नाम का है। इसलिए मुख्य फल से हम लोग वंचित रह जाते हैं, बहुत जन्म पिछड़ जाते हैं। इसलिए खूब सावधान वैष्णव का किसी प्रकार से अपराध न हो, न अपराध यदि देखो उनका कोई भी ऐसी बात तो क्या करो, मत देखो, मत देखो। देखने वाला दूसरा है, जो कोई वैष्णव वैसे उच्च कोटि के हैं वो देख करके उसका सुधार करें, तुम सुधार नहीं कर सकते, इसलिए तुम मत उपकर तुम भजन करो। वो भजन नहीं कर रहे हैं इसके लिए तुमको इतना चिंतित होने की क्या जरूरत है, तू अपना देखो ना, अपने तरफ हम नहीं देखते दूसरों की तरफ नहीं देखते और दिन रात उसी की चर्चा। आजकल एक फैशन हो गया है और इसीलिए बहुत जल्दी भजन राज्य से छुटकारा हो जाता है, इसको खूब अच्छी तरह जहां जहां हम देखते हैं किसी चीज में पतन हुआ, कोई भयंकर विपत्ति आ गई, भजन राज्य से छुटकारा हो गया, या जागतिक भी कोई विपत्ति आती है इसके मूल में मूल वैष्णवों का ही अवज्ञा है। देखो कहां वो नीच से नीच व्यक्ति किसी की अवज्ञा नहीं की, पाप कुछ किया, पाप से वो कुछ थक जाता है कुछ दिनों के बाद, किंतु जहां वैष्णवों का संग हुआ वहां पर वो सब उतर जाता है और सुख नाम अपना क्रिया करना करने। तो जहां जहां हम देखते हैं वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति, संतों के प्रति, साधु के प्रति, शास्त्र के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति यदि थोड़ी सी अवज्ञा इत्यादि हुई तो पतन अनिवार्य। आप लोगों ने अभी सुना होगा दस्त प्रजापति की कथा। दस्त प्रजापति ने नारद जी को साप से बिगड़ गया कि हमारे पुत्रों को तुमने भगवान के भजन में लगा दिया, वो घर छोड़ के चले गए, हमारा तो सर्वनाश हो गया, तुमको अभी संपादित एक जगह रह करके तुम नाम नहीं करेगा। वो तो बड़े प्रसन्न होंगे कि ये तो अभिशाप नहीं है मेरे लिए, वरदान हुआ, किंतु उसके लिए क्या हुआ, जो शो को कांटा दिए तार गो टू, जो तुमको कांटा पाया वो क्या होगा कुछ दिनों में, वो एक कांटा त्रिपुर होकर के इसे थोड़ा सावधान इस विषय में रहने से, और तुम्हारा जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो दक्ष प्रजापति ने केवल अभी संपाद किया, किंतु परिणाम क्या हुआ, परिणाम हुआ जब पहले वैष्णव के प्रति किया, इसके बाद में गुरु के प्रति हुआ, इसके बाद में भगवान के प्रति वो चला जाता। इसीलिए दक्ष प्रजापति की ऐसी दशा। अपने पति की अवज्ञा की, उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने बदला जी राम भगवान है, मैं राम भगवान है, अपनी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ रहा है, हासिते हासिते कर रहा है, वो भगवान कैसे होगा। शंकर जी ने कहा जाके तो तू परीक्षा कर लेना, तो राम का रूप बना, उनका सीता जी का रूप बना करके परीक्षा करने गई। सीता ने कहा मैया तू यहां पर घूम रही है और शंकर जी उधर में गए हैं, तुम यहां पर कैसे रह गई। तब माता ठनका उनका, अरे शंकर जी ने कहा था वही बात तो ठीक है। फिर लज्जित होकर के उनको राम को प्रणाम किया, तभी देखा जी सीता जी लक्ष्मण जी राम जी ने वहां पर, जिधर देखिए प्रत्येक पेड़ वृक्ष गुल्म लता सभी कुछ ऐसे हो गए। अब तो और भी बड़ी वो डर गई, अब उनको प्रणाम करके चलने वाली थी, तो अब देखा जी वही राम अकेले हैं, सीता जी नहीं। उनको इसके लिए दिखलाया सीता राम से कभी बिलग नहीं होती है, ये भी एक माया है, इसलिए सीता जी के लिए राम नहीं रो रहे, वो तो सप्त में उनके साथ में मिले हुए हैं। अब दिखला करके दृश्य पट बंद कर दिया और फिर वो देखा क्या, अरे राम तो हासिते हासिते पुनः कर रहे हैं। अब वो अब उनको संदेह नहीं हुआ, शंकर जी के पास में गई, शंकर जी ने भीतर ही भीतर जान लिया और जान करके कहा कुछ देवताओं ने पुष्प वृष्टि की जैसे आपके समान ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। भवानी ने पूछा कौन सी प्रतिज्ञा, आपने क्या प्रतिज्ञा की। मौन हो गए, माता का सम्मान आप देने लगे। फिर देखा जी शरीर रख करके क्या करूंगा, और पिताजी के यज्ञ में जाकर के इस शरीर की आहुति दे दी। फिर से पार्वती होकर के उमा होकर के आई, फिर शंकर जी के साथ। बहुत भयंकर है। अब थोड़ा सा और सुनिए आगे, जहां जहां गुरु वैष्णव के प्रति अनादर हुआ और उनका यह दोष देखा है, तो दोष उसमें नहीं, तुम जो देख रहे हो तुम्हारी आंख में तुम्हारे हृदय में यह दोष है, वैष्णव में गुरु में संतों में शंकर जी में इत्यादि में कोई दोष नहीं होता है। किंतु हम जब दोष देखते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ही और आंख ही और चित्त वृत्ति भी वैसे ही है, इसलिए हम लोग उसमें दोष देखते हैं। इस चीज को देखलाने के लिए बार बार ये सब उपाख्यान दे रहे हैं।
अब उपाख्यान दे रहे हैं इसके बाद में, हम अजामिल के बाद में। देवताओं और असुरों में बहुत बार युद्ध हुआ। जब देवताओं ने अपने गुरु जी की अवज्ञा की तो वो लोग हार गए, और देवता लोग क्या हो गए, जीत करके स्वर्ग इत्यादि का राजा बन गए, भूमंडल का राजा बन गए। और फिर देवताओं ने जब अपने गुरु जी की अवज्ञा की तो असुर लोगों ने उनको जीत करके पराजित करके और उसका सब कुछ ले लिया। ये लोग भटकते रहे। फिर देवता लोग जब हार गए तो फिर अपने गुरु जी की महिमा समझी और गुरुजनों की महिमा समझी, फिर उनका आदर किया, तो फिर वो ये लोग जीत गए, वो लोग हार गए। ऐसा ही ये क्रम चलता है। बलि महाराज जी को भगवान ने सुतल में भेजा, और इसके बाद में फिर शुक्राचार्य का इन लोगों ने अनादर किया। शुक्राचार्य के अनादर करने से देवताओं ने मौका देकर इन पर आक्रमण किया और उन सबको मारपीट करके भगा करके पुनः त्रिलोकी के राजा बन गए। भूर्वस महाजन तपस्य इत्यादि के तल ताला तल पाताल राजा बन गए। अब इंद्र को ऐश्वर्य प्रदान मिला, ये स्वर्ग के राजा बन गए। अब बड़े ठाट के साथ में जीवन व्यतीत करने लग गए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको संपदा मिली और उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई? क्या एक हिंद के उपाय भी हाँ, प्रभुता पाई का मद नाही, प्रभुता को पा करके किसको मद नहीं हुआ? जिसको नहीं हुआ वो समझो कि सच्चे हरिदास ठाकुर जी जैसे और ऐसे ऐसे वैष्णव लोग हैं, प्रहलाद महाराज जी जैसे हैं, और नहीं तो जो आरंभ करने वाले भजन हैं या दूसरे लोग हैं, प्रभुता मिलते ही एक मठ कमांडर हो गया तो मानो ये क्या न जाने हो गया, एक प्रधानमंत्री हो गए तो न जाने क्या हो गया, कुछ पांडित्य हो गई तो न जाने वो क्या हो गया। धरा को सारा देखता है। उसी प्रकार से थोड़ा सा रूप हो गया तो न जाने क्या हो गया। इसलिए प्रभुता पाई का मदना है, वो जरूर हो जाता है। थोड़ी सी बुद्धिया बुद्धि हो जाए ना, थोड़ा सा किसी भी विषय में, तो बहुत गुमान हो जाता है। इंद्र को बहुत गुमान हुआ, राज्य मिल गया। ये जितने भी पवन इत्यादि थे देवता लोग उस समय आकर के इनकी सेवा करने लगे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग इनको स्तौ स्तुति करने लगे। फूलों के गजरे माला में मोटी मोटी मालाएं उनको देनी चाहिए, सब स्तौ स्तुति कर रहे। उसी समय में बृहस्पति जी कहीं से आए, सभा भवन में घुसे जहां पर उनका अभिनंदन हो रहा था। इंद्र ने देख करके भी न देखा, सोचे ये कहां से आ गए गुरु जी, नहीं आते तो अच्छा होता, उठे नहीं आसन से। जब आसन से नहीं उठे और कुछ देखा, जैसे अपनी आंख चुरा करके दूसरी तरफ देख रहे हैं, गुरु जी के तरफ में देख करके उठ करके खड़े होकर अभिवादन तो करना चाहिए, नहीं किया। समझ गए शिष्य का कुछ चित्त डमाडोल है, उसको अहंकार आ गया है, ये सब मेरी इच्छा, हमारे प्रयत्नों का फल है, इसलिए उठे नहीं। जब वो तो वहीं से वो थोड़ा सा निकल करके बाहर चले गए, यहीं बाहर चले गए। अरे हाय हाय, मैंने क्या किया, गुरु जी की अवज्ञा की, अपराध हमारा हुआ। बड़े दुख करने लगे। ओहो, जिनके प्रभाव से आज मैं राजा बना था, आंख बंद मत करो, कोई बंद मत करो। जिसके प्रभाव से आज मैं इंद्रत्व लाभ मिला, असुरों को जितना बड़ा भारी कठिन था वो भी मिला, मैं सब सुखों को भोग रहा हूं, और वो गुरु जी आए, मैंने अनादर कर दिया। अरे उनको तो तनिक देर से भी कुछ याद आ गई, हम लोग को याद ही नहीं आती। हमने कहा जो किया बहुत अच्छा किया, हमने अब क्या कि वो ऐसे ही पात्र हैं, ये कह दें, ये नहीं देखेंगे उनकी वैष्णवता क्या है या नहीं है। वो तो चले गए गुरुजी। अब ये मन में दुखी होकर के उनको ढूंढने के लिए उनके घर पर गए, जब देखा जी ये आ रहे हैं तो अंतर ध्यान हो गए, वो चले गए। जब अंतर ध्यान हो गए, इधर में बृहस्पति जी की यह बात, अनबन की बात, शुक्राचार्य जी अपने मन ही मन में जान गए ऐसी बात। बस साथ ही साथ में उन्होंने कहा अब ये आक्रमण करो, अभी समय है, मौका है। बस साथ ही साथ आक्रमण किया, मूली गाजर की तरह उनको काटा पीटा, और जो अमृत पान किया था वो लोग भगे। किसी की कुछ पैर तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का नाक तोड़ दिया, भगे वहां से। इंद्र भी भगे, भगते भगते जाकर के मानसरोवर में छिपे। इस तरह से इनका राज्य चला गया। ये देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा जी तुमने बड़ा भारी अनर्थ किया, अब तुम लोग एक बात करो, तुम लोग जाओ, त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप है, देवता हैं, त्वष्टा ऋषि हैं, देवता हैं, किंतु उनकी पत्नी जो हैं वो दैत्य कुल की हैं, उनकी कनिष्ठ बहन है दक्ष प्रजापति या किसकी, वो बहुत ही वो सबसे छोटी बड़ी सुंदरी थी, तो त्वष्टा ऋषि का विवाह कर दिया उससे। तो उसका पितृकुल तो देवता है और मातृकुल, तुम कोई चिंता मत करो यज्ञ कराने में और ये सब काम में बहुत ही अद्भुत हैं, आप लोग जाकर के उनको प्रणाम करके और अपने यज्ञ में लगाइए और उनके उपदेशों को सुन करके वैसा ही काम कीजिए। सुन करके बोलो गए और जाकर के उनको अभिवादन किया विश्वरूप को, और कहने लगे जैसे आप हमारे पुरोहित बन जाइए और हमारा यज्ञ कराइए। उन्होंने कहा जो ब्राह्मण पुरोहित बनता है जगत का सब पाप वो ग्रहण करता है, जजमानी में जजमान का जितना भी पाप होता है और पाप का कमाई खा करके उसका जो ब्राह्मणत्व होता है वो सब ध्वंस हो जाता है, इसलिए मैं वो जो फसल हो जाती है, फसल हो जाने के बाद में जो गिर जाता है अन्न खेतों में ले जाने के बाद में गृहस्थों के, उसको मैं चुन करके ले आता हूँ और उसी का मैं किसी प्रकार से भगवान का भोग दे करके मैं ग्रहण करता हूँ। छिलोन छिबिस्ती, मैं किसी के साथ हाथ नहीं पसारता, किसी की भिक्षा भी नहीं लेता और जजमानी का काम नहीं करता, यह बड़ा भारी पाप का काम है, उससे बल्कि और कोई काम करे तो अच्छा है, इसलिए मैं नहीं करता। और फिर मुझको जजमान बनेंगे, मैं नहीं करता, जो भगवान की स्मृति है वो भी भूल जाएगी। नहीं कहे हम लोग असहाय होकर के ब्रह्मा जी के कहने से आपके पास में आए हैं और हम आपके पूर्व पुरुष हैं, इसलिए पूर्व पुरुषों का अनादर करना ठीक नहीं है, इसलिए हमारी बात मान करके तुम हमारे बेटे और वंशज हो, पूर्वजों के लिए वो श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण श्राद्ध, तो यही तुम्हारा श्राद्ध है श्रद्धा है, तुम हमारी बात मान करके हमारे पुरुष। उन्होंने कोई उपाय नहीं दे करके उनका पुरोहित बनना आरंभ ये किया और आहुति देने लगे, यज्ञ कराने लगे और उपदेश इन लोगों को देने लगे। इनके फल से हुआ क्या, उनके यज्ञ इत्यादि से नारायण कवच इत्यादि का उपदेश दिया, जिसे असुरों को बहुत जल्दी से परास्त करके उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य ले लिया। किंतु वो जो बृहस्पति का जो अभी संपात था अभी पूरा भी नहीं हुआ था, कुछ रह गया था, तो उस समय में इसकी मातृकुल दैत्य होने से और पिता देवता होने के वजह से वो आहुति तो देता था जोर से, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, और अपनी मैया के लिए क्या नाम था उस कुल के लिए स्वाहा, ऐसे धीरे धीरे कह देता, इसलिए वो लोग भी उनका भी बल बढ़ता था और देवताओं का भी बल, किंतु देवताओं का अधिक बलता था, बल बढ़ा था, और इसलिए असुरों को ये संपूर्ण रूप से ध्वंस न कर सके वो जो यज्ञ में देता था। इंद्र ने देखा यार ये असुर लोग अभी ध्वंस नहीं हुए, बात क्या है, किसी ने जाकर के कह दिया ये ऐसी बात है। बस इंद्र उसके पास में गए और कान लगा करके सुनने लगे, पीछे से जो वो देखे नहीं और सुना तो वो करें इंद्राय स्वाहा, ये तो जोर से कर रहा है, देवताय स्वाहा कर रहा है जोर से, विष्णु विष्णुआय स्वाहा वो करा जोर से, किंतु बलिराजाय स्वाहा और सब जो धीरे धीरे कहता मन ही मन में और दीदा है स्वाहा। बस उन्होंने उसके तीन शिव थे, एक से वो सूरा पान करता, एक से सोमरस पान करता और एक से अन्न खाता, और तीनों मुख से मंत्र उच्चारण करता। बहुत शक्तिशाली था, जो मंत्र पाठ करेगा वो जरूर उसका सिद्ध हो जाता था। उन्होंने उठाया तलवार और उसके गले को काट दिया। जब गिर पड़ा तो ब्रह्म राक्षसी वहां से उत्पन्न हुई, भगते भगते भगने लगते। अब फिर ब्रह्मा के पास में गए। इस तरह से क्या बतलाना था, अब उसके पिता को जब ये पता चला कि हमारे बेटे को उसने मार डाला इंद्र ने, तो वो यज्ञ करने लगे। ऐसा कोई पुत्र हो जो इंद्र को ध्वंस करे, तो वो आहुति दे रहे थे। किंतु आहुति में और यज्ञ में होता है, यज्ञों में मंत्र के उच्चारण का विधान होता है, कभी हर्ष कभी दीर्घ कभी प्लूट, तो इनका मंत्र जैसा होना चाहिए था इंद्र सत्रो विवर्धस्व, तो इसके बदले में उच्चारण कुछ और हो जाता था। उन्होंने इंद्र शत्रु के ऊपर में विशेष जोर देने की वजह से इंद्र का शत्रु हुआ, किंतु इंद्र के द्वारा उसका वध होगा ऐसा हो गया भाव, और ऐसा उसी समय में एक महा राक्षस पैदा हुआ।